आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं ना सभी? जो स्वस्थ नहीं रहना चाहते वह हाथ उठाएं। देखिए कोई नहीं चाहता है। मुझे राजयोग का परिचय हुआ जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में था, और 95 में मेरा यहां आना हुआ। उससे पहले मैं स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में था दिल्ली में। तो मेरा आना क्यों हुआ, मैं आपको कुछ शब्दों में पहले बता दूं कि एक डॉक्टर दिल्ली छोड़ के यहां क्यों आया। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो स्टाइल था काम करने का, आप सभी समझते हैं हार्ट की बीमारी दुनिया में बहुत बढ़ती जा रही है, और बीमारियां बढ़ रही हैं घट रही हैं? कौन सी बीमारी कम हो रही है? जो जो डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं, तो डॉक्टर बीमारियां बढ़ा रहे हैं ऐसे क्या? हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ते जा रहे हैं, और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। एनवायरमेंट, चलिए मैं फिर खड़ा होकर बात करूं तो अच्छा रहेगा उसे। तो जब हॉस्पिटल में थे एस्कॉर्ट्स में, तो हमारे जो पेशेंट्स होते थे, आपको पता जब हार्ट अटैक होता है तो सबकी इच्छा क्या होती है, तुरंत सबको डर लगता है कि हमारे हमें प्राण ना निकल जाए, तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं। तो हॉस्पिटल में पेशेंट आते थे और हम उनको मैनेज करते थे, और उसके बाद उनका एंजियोग्राफी होता था। एंजियोग्राफी किया और उसके बाद हम देखते थे इसकी तो आर्टरीज ब्लॉक है ना, पता ना आपको हार्ट अटैक क्यों होता है? आर्टरीज ब्लॉक होने से होता है। तो जब ये आर्टरीज ब्लॉक मिलती थी तो हम कहते थे इसकी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या बाईपास करा लीजिए। तो जैसे मैंने काफी पेशेंट्स को, हमारा यही होता था कि भी आप तुरंत बाईपास कराइए, तुरंत एंजियोप्लास्टी कराइए, अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, खतरा है, बहुत खतरा है ना, तो हम ऐसा बोलते थे। तो हमने पेशेंट्स को बोला, जैसे एक पेशेंट को मान लीजिए हमने बोला, तो शाम को एंजियोग्राफी किया, बोला कि आप सुबह एंजियोप्लास्टी कराइए नहीं तो बहुत खतरा है। तो उस पेशेंट का हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया, वो पेशेंट ठीक होकर चला गया। वो 3 महीने बाद दोबारा से उसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ। फिर हमने दोबारा दाखिल किया, दाखिल करने के बाद उसका इलाज किया, और इलाज करने के बाद फिर हमने उसको ठीक हुआ तो फिर एंजियोग्राफी किया, तो देखा जहां हमने स्टेंट लगाया था वो वहां से फिर ब्लॉक हो गया था, फिर दोबारा ब्लॉक हो गया वहां पर 3 महीने के अंदर ही। तो फिर जो है हमें, फिर हमने वो हमारा रूटीन तो वही था कि हमने फिर पेशेंट को बताया कि दोबारा एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, है ना। तो फिर उस पेशेंट, जैसे कई बार ऐसा वार्ड में ऐसा होता था, हम राउंड ले रहे होते थे, तो वो एक दो बार ऐसे एक पेशेंट ने मुझे बुलाया, डॉक्टर साहब आप अपने रिलेटिव को भेज के बुलाया, डॉक्टर साहब एक मिनट मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। तो मैं गया तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब लास्ट टाइम जब आपने कहा था एंजियोप्लास्टी कराने के लिए तो आपने तो वाइफ को बताया था, तो वाइफ ने बच्चों ने मिलकर रातों रात हमारा एक घर था उसको बेच दिया, है ना, क्योंकि ओवरनाइट पैसे हमारे पास थे नहीं, 2 लाख रुपए, और फिर हमने बेच दिया। तो अभी तो हम किराए के मकान में रहते हैं, है ना, अभी हम क्या बेचें। तो ऐसा मुझे कई बार ऐसा सुनने को मिला, बाईपास कराने के बाद फिर दोबारा से तकलीफ हो जाना, एंजियोप्लास्टी कराने के बाद फिर तकलीफ हो जाना। तो मुझे ऐसा अंदर से लगता था कि हम लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं बीमारी के साथ, न्याय नहीं कर पा रहे हैं, और बीमारी बढ़ती जा रही है। आपको पता हो शायद 1960 में सिर्फ 1% लोगों को हार्ट की बीमारी थी, 100 में से 1 आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी 1960 में, और आज लगभग 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी हो गई, 100 में से 15 लोग हार्ट के पेशेंट बन गए। आप सुनते होंगे ना आजकल तो बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और यंग लोगों को भी हो रहे हैं। अभी ही अगले लास्ट हफ्ते हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया जो कि 21 साल का था, 21 साल का नहीं 20 साल का था, 21 में शुरू किया था, इसी साल लास्ट ईयर 12th पास की है, और इस साल उसने एडमिशन लिया उदयपुर कॉलेज में, और अभी ही मतलब लास्ट वेडनेसडे ही उसको हार्ट अटैक हुआ. तो मतलब और ये अंदाजा है कि 2010 तक ये हार्ट की बीमारी कितनी हो जाएगी, हर तीसरे आदमी को हो जाएगी. ठीक है, और अभी तो 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक होते हैं, तो आने वाले समय में ये हर मतलब इवन स्कूल गोइंग बच्चों को भी होने शुरू हो जाएंगे. इसकी वजह आप खुद जानें. ठीक है, वो आगे मैं बताऊं क्यों ऐसा होता है. तो खाली ये बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी देखें तो अभी हम उसके बारे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई बीमारी भी हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें. लाइट्स ऑफ कर दीजिए प्लीज. कोई बीमारी से भी हम कैसे स्वस्थ बने, खाली हार्ट की बात नहीं है, कोई भी बीमारी, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो हार्ट अटैक्स हो, या पैरालिसिस की बीमारी स्ट्रोक हो जाता है वो हो, कोई बीमारी भी हम उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. ठीक है, तो अभी यही टॉपिक है ना, इन्वेस्ट इन हेल्थ फॉर अल्टीमेट वेल्थ. नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारा हॉस्पिटल है जिसमें आप कल देखने जाएंगे. नेक्स्ट, ये और भी है हॉस्पिटल का, बस हाँ जी. नेक्स्ट, देखिए WHO एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. उसने एक स्लोगन दिया था 1977 में, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, कि हम सबको 2000 तक स्वस्थ बना देंगे. ऐसा हुआ क्या? 2000 तो हो गया, पूरा हो गया ना 2000, चार साल भी बीतने वाले हैं, तो हम स्वस्थ बन गए क्या सभी? है ना, नहीं बने, और ज्यादा बढ़ गई. अब हेल्थ, उसी ने डेफिनेशन हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी थी, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट दी एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. अर्थात स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें खाली बीमारी नहीं है इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं. हेल्थ का मतलब है कि हम फिजिकल तौर पे भी स्वस्थ हैं, मतलब फिजिकल बॉडी के तौर पे भी स्वस्थ हैं, हमारे सब अंग ठीक कार्य कर रहे हैं, मेंटल तौर पे भी स्वस्थ हैं, मतलब मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं. मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, हमारा हम सोच ठीक सोच सकते हैं, जिस समय जो चीज सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, फोकस कंसेंट्रेशन कर सकते हैं, हमारे अंदर चिंता, जल्दी, गुस्सा है ना, ये भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये भी एक बीमारी है. क्रोध एक बीमारी है, क्रोध भी एक बीमारी है, चिंता करना भी एक बीमारी है. किधर, चिंता जैसा मर्ज नहीं कहते हैं ना, जल्दी करना, चिंता करना, सबसे बड़ी बीमारियां हैं, जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, ये भी एक बीमारी है. तो इससे ये भी हमारे अंदर ना हो. फिर है सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ का अर्थ है सामाजिक तौर पर स्वास्थ्य, अर्थात सबके प्रति हम समाज में सबके प्रति प्रेम की भावना हो, शुभ भावना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, नफरत की भावना ना हो, सबके प्रति सहयोग की भावना हो, तो यह है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य. और स्पिरिचुअल वेलबींग, स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है, कि हम अपने बारे में जानते हो, हम कौन है, हमारी सच्चाई क्या है, और जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, तो मुझे बताइए आप. और फिजिकल स्वास्थ्य में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि फिजिकल स्वास्थ्य का अर्थ खाली ये नहीं है कि हम, एक तो हमारी बॉडी में 8 अंग होते हैं, हमारे 8ों अंग ठीक कार्य कर रहे हों, और बीमारी आपको शायद पता होगी कि अगर आपको आज अभी बैठे आप अपने आप को, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, फिजिकल तौर पे भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको 9 दिन पहले मच्छर ने काटा है तो मलेरिया आज हो जाएगा. ठीक है, 14 दिन पहले आपने कुछ गलत खाना खाया है तो उसका टाइफाइड बुखार शुरू होगा, है ना. अगर आपने 6 महीने पहले आपको कोई कीटाणु हेपेटाइटिस का गया, पीलिया का गया है, तो 6 महीने बाद उसके बाद पीलिया होता है. तो आपको पता है अपने अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है, कैंसर अंदर अंदर ग्रो होते रहते हैं. हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना 5 साल की उम्र से शुरू होती है. हार्ट की आर्टरीज कब से ब्लॉक होना शुरू होती है? 5 साल की उम्र से, धीरे 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 धीरे. देखने में 10 साल के बच्चे जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया हार्ट की आर्टरीज उनकी उसमें भी ब्लॉक पैदा हो गए थे. तो मतलब 5 साल की उम्र, जब से हम अपनी होश संभालते हैं, अपनी मर्जी से खाना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी से सोचना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी से देखना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी से बोलना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी से सुनना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी से कर्म करना शुरू करते हैं, तब से हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती है. जब तक मां के कहने से करते नहीं होती है, ठीक है, बाप के कहने से कैसे नहीं करते होती है, जब अपना टेस्ट पैदा करते हैं तब से हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। वो हमारे ऊपर इच्छा डिपेंड करता है कि हम कितना उसको जल्दी करें या देर करें, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो थी हेल्थ की डेफिनेशन की बात। और अगर हम आज का स्टेटस देखें हेल्थ का, तो हम देखेंगे आज 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। शहरों में कितने लोगों को? 100 में से 30 लोगों को, और 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज है, 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है ना, जो हार्ट अटैक्स जो हो जाते हैं, 100 में से 20 लोगों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम। हड्डियों से मतलब हड्डियों में दर्द रहती है, ज्वाइंट्स में दर्द रहती है, मसल्स में दर्द रहती है, ठीक है। और 100 में से 20 लोग उदास हैं, डिप्रेशन में है। 100 में से 12% लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है, इंसोमनिया की बीमारी है। 100 में से 30 लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन है, चाहे गला खराब है, चाहे टीबी की बीमारी है, चाहे निमोनिया है, चाहे पेट का इंफेक्शन है, कोई ना कोई इंफेक्शन है, ठीक बात है। और कौन सी बीमारी रहेगी? तो अभी 100 हो गए, नहीं हो गए पूरे? हैं, 100 से ज्यादा हो गए? 100 क्रॉस हो गया, नहीं हो गया? ऐसे तो और भी कैंसर, मैं कैंसर नहीं बताया, कैंसर भी लगभग 8%, 100 में से 8 लोगों को कैंसर की बीमारी है, किसी ना किसी प्रकार कैंसर है। तो हर बीमारी मतलब जो है, अगर हम गिने तो 200% बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगर टोटल जोड़ेंगे ना, 100 लोगों को 200 बीमारियां होंगी, ठीक है। तो आप में से मुझे बताओ, कौन आप में से कौन बिल्कुल स्वस्थ है? WHO के हिसाब से बताओ, फिजिकल तौर पे, मानसिक तौर पे, और सोशल तौर पे, और स्पिरिचुअल तौर पे, जो बिल्कुल स्वस्थ है, कभी चिंता गुस्सा नहीं करते हो, जल्दी नहीं करते हो, वो भी एक मानसिक बीमारी है, ठीक है। स्वस्थ माना वो डेफिनेशन WHO की ना, तो सभी के सभी देखो है ना रोगी, है ना, राइट। नेक्स्ट, अब इसका इलाज कैसे करें? बड़ी ओपन डिस्कशन है हमारी, कोई लेक्चर नहीं करना है, मुझे लेक्चर करना आता भी नहीं है, है ना, हम आपसे ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उसका आंसर भी करते जाएंगे। आयुर्वेद ने कहा, आयुर्वेद कब से आया? 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद आया। आयुर्वेद ने कहा कि आप सभी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं? आहार से। प्रॉपर आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, व्यायाम करिए रेगुलर, खुली हवा में व्यायाम करिए, और आचार, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, आपस में, समाज में, घर में अच्छा व्यवहार रखिए, और योगा, मेडिटेशन, आप अपने अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ के रखिए, ताकि आपको शक्ति मिलती रहे और अपने जो भी आप सामाजिक कार्य करते हैं उसको अच्छी तरह से निर्वहन कर सके। तो ये आयुर्वेद ने कहा कि हर बीमारी का कारण ही, हर बीमारी का कारण क्या है? आहार, गलत खाना खाना हर बीमारी का कारण है। एक्सरसाइज का ना करना बीमारी का कारण है। दूसरों से गलत व्यवहार करना, घर में या परिवार में या समाज में गलत व्यवहार करने से बीमारी पैदा होती है, और योगा ना करने से बीमारी होती है। गलत लोगों से योग माना कनेक्शन, अगर आप गलत लोगों से कनेक्शन रखेंगे तो आपको बीमारी होंगी, अगर परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे तो क्या होगा? आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा, इधर ये तो हमारी इंडिया की बात हो गई, अब यूरोप में क्या चल रहा था उस समय? एस्क्लेपियस 360 BC, लगभग 2360 साल पहले एस्क्लेपियस नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, उसने तीन बातें कही, फूड, एयर एंड माइंड। उसने बताया कि तीनों हर बीमारी कारण जो है वो तीन चीजें हैं। आजकल तो बहुत स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया ना, हर चीज का स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया, हर चीज के डॉक्टर अलग हैं, किंतु उस समय ऐसा नहीं था। क्या हुआ, सब ठीक है? हर बीमारी के कारण जो है तीन है, एक तो फूड, आपका जो खाना आप खाते हैं उससे बीमारियां होती हैं, हवा से, अगर आपके घर में वातावरण ठीक, हवा नहीं आपके घर में बहती है, क्रॉस ठीक नहीं होती है, तो उससे बीमारियां होती हैं, और तीसरा आपका माइंड, आपका मन, अगर मन आपका नेगेटिव है, दूसरों की बुराइयां सोचता है, आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा, उदासी या सेंसिटिव नेचर है आपकी, इमोशनल नेचर है, अगर आप उससे ग्रस्त हैं तो आपको बीमारियां होती रहेंगी, ठीक है। तो दोनों लगभग एक चीज नहीं है क्या? आहार, व्यायाम माना एक्सरसाइज, एयर, हवा और आचार और योगा, ये माइंड से रिलेटेड है। तो इसने क्या बनाया, एस्क्लेपियस ने अपने देश में समुद्र किनारे बड़े बड़े हॉस्पिटल टाइप बनाए, उसका नाम उसने रखा एस्क्लेपियंस। वो क्या करता था, किसी बीमारी के भी पेशेंट को अपने यहां दाखिल कर लेता था और दाखिल करने के बाद उनका इलाज कैसे करता था, सबसे पहले तो उनका मन वॉश करता था, माइंड को वॉश करता था, जो भी उनको मन में जो नेगेटिविटीज है उनको साफ करना, वॉश कर देता था। और उसके बाद उनको फिर सिंपल खाना, फल सब्जी, स्प्राउट्स, अंकुरित, है ना, वो इस तरह का खाना देना, और हवा समुद्र किनारे बहुत अच्छी थी, सुबह शाम उनको सैर कराना, और हर बीमारी ठीक हो जाया करती थी। इसकी दो लड़कियां पैदा हुई, एक का नाम रखा उसने हाइजिया, एक का नाम रखा पेनेशिया। हाइजिया माना उसने, मतलब हाइजिया ने यही बात की कि हाइजीन, अपने मन की सफाई रखो, अपने खाने की सफाई रखो और अपने हवा की सफाई रखो। आपका जहां आपका घर बना है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा ठीक रहनी चाहिए, खुली हवा में बैठना चाहिए, खुली हवा में आ जाना चाहिए, पानी साफ पीना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना ऑफिस या घर। और पेनेशिया जो थी वो मॉडर्न मेडिसिन की, उसे फादर मदर कहते हैं, फादर कहते हैं, उसने बताया कि कुछ मेडिसिन भी आवश्यक होती है। तो ये बेसिक साइंस का, आज से 2500 से पहले की साइंस इस तरह की बातें कहती थी। नेक्स्ट स्लाइड। और आज ये बड़ा क्लियर पता लग गया कि आज बीमारी क्यों बढ़ रही है, बीमारी बढ़ने का कारण है कि हमने अपने जीवन जीने का ढंग खराब कर लिया है, जीवन जीने का ढंग हमने खराब किया है, जिसकी वजह से हर बीमारी बढ़ती जा रही है। और जीवन शैली कहो या जीवन जीने का ढंग कहो, लाइफस्टाइल क्या चीज है, होल स्पेक्ट्रम ऑफ डे टू डे लिविंग, हम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं और रात में भी क्या करते हैं, वो सब कुछ जीवन शैली कहलाता है। ठीक बात है, जीवन शैली का खाना खाने की बात नहीं है, एक्सरसाइज करने की बात नहीं है, जीवन शैली माना हम जो भी सुबह उठते हैं, हम कितने बजे उठते हैं और उठने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सारा दिन में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कर्म करते हैं, कहां जाते हैं, और फिर किस समय घर आते हैं, फिर खाना किस समय खाते हैं, कैसे खाते हैं, बातें करते हुए खाते हैं या शांत होकर खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद क्या करते हैं, फिर सोते कितने बजे हैं, फिर उठते क्या, सोते कैसे हैं, नींद आती है कि नहीं आती, सब कुछ में आता है। क्या आता है इसमें, सबसे पहली बात है माइंड बॉडी रिलेशनशिप, कि हमारे मन और तन का आपस में संबंध क्या है, क्या मन पे कंट्रोल है, क्या आपका अपने मन पे कंट्रोल है, क्या आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल है, आपकी जीभ पर आपका कंट्रोल है, अपनी आंख पे कंट्रोल है, अपने कानों पे कंट्रोल है, अपने हाथों पे कंट्रोल है। तो माइंड और बॉडी इनका आपस में संबंध क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या है आपका, आपका व्यवहार कैसा है, ये भी लाइफस्टाइल का बहुत सबसे मुख्य अंग है। दो बातें सबसे मुख्य है, माइंड बॉडी रिलेशनशिप, दूसरा आपका व्यवहार। फिर है डाइट, आपका खाना कैसा है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। फिर एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तीसरी बात नींद, आप नींद किस समय करते हैं, सोते किस समय है, आप में से ऐसे कितने जो 10 बजे सो जाते हैं, हाथ उठाएं, खड़े होकर दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता लगे कितने बजे सोते हैं, 10 बजे सो जाते हैं जो, मैं समझता हूं लगभग 25% 30% होंगे, बैठ जाए, वेरी गुड। बाकी लोग कितने बजे सोते हैं, ठीक है, वेरी गुड, लाइट्स ऑफ। फिर ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप, आपस में आपका संबंध कैसा है, परिवार में संबंध कैसा है, और फिर वर्क सिचुएशंस कैसी हैं, जहां आप कार्य करते हैं वहां आपकी कैसी स्थिति कैसी है, ड्रग अब्यूज, जो स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, तो ऐसे लोग उनको भी कई सारी हो जाती हैं। और इसको कैसे बदल सकते हैं, इसको बदला कैसे जा सकता है, बदलने का तरीका यही है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पहले तो पता लगे हमें क्या करना चाहिए, राइट बिहेवियर क्या है, राइट माइंड बॉडी रिलेशनशिप क्या है, राइट डाइट क्या है, राइट एक्सरसाइज क्या है, राइट स्लीप क्या है, हमारा काम कैसे होना चाहिए, हमें कौन सी चीज हमारे नुकसान करती है, कैसे हम ठीक उसे ठीक हो सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इतना आसान है क्या? क्योंकि हमने भी रिसर्च की, मैं आपको रिसर्च के रिजल्ट बाद में बताऊंगा, हमने रिसर्च की तो रिसर्च में हमने देखा कि जो हार्ट के पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, पेशेंट्स हमारे रेफर होते थे अहमदाबाद, दिल्ली और बॉम्बे से, हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर होते थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोजेक्ट था जो हमने किया, छह साल किया स्टडी उसको, अभी उसके रिजल्ट्स में एशिया पैसिफिक कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी थी सिंगापुर में जो हुई थी, तो उसमें उसके रिजल्ट्स में बताया, सबने बहुत अप्रिशिएट किए, और इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने कहा कि अब ये प्रोजेक्ट हमारे हमें भी दिया जाए, अमेरिका वालों ने कहा, यूके वालों ने कहा, जर्मनी वालों ने कहा, और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, सभी देशों के डॉक्टर्स टॉप कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए थे, क्योंकि और इससे ये सिद्ध हो रहा है इस प्रोजेक्ट से कि अभी आने वाले सालों में जब हम इसको पब्लिश कर देंगे, अभी हमने पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश करने के बाद आने वाले सालों में किसी को भी इस दुनिया में बाईपास कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिजल्ट्स हैं। तो मैं सिंगापुर में जब था या मलेशिया में था तो ऐसे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स पब्लिक प्रोग्राम होते थे, तो उसमें जैसे हमने पूछा कि भाई आप लोग बताइए, आप लोग खाना सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं ठीक खाना क्या होता है, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह सुबह सैर करनी चाहिए, आप लोग कितने जानते हैं उसके क्या फायदे हैं? तो सभी ने हाथ उठाया कि भी हम सब जानते हैं। फिर मैंने कहा इतनी बड़ी गैदरिंग में पूछा आप कितने लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो पर जानते कितने लोग उठे? सिर्फ तीन लोग, है ना। तो जानना और करना, इसमें फर्क है, नहीं फर्क है। हमने उसमें दो ग्रुप बनाए थे, हमें ये बड़ा क्लियरली पता लगा है कि हार्ट की बीमारी का मुख्य कारण क्या है, जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, ये पांच मुख्य कारण है, याद कर लेना, जल्दी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, ये साइंटिफिक कारण है, उदास होना और सेंसिटिव एंड इमोशनल नेचर, नाजुक और भावुक, कोई नहीं किसी कोई बात की बोस को सोचते रहना इसने ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, भावुक इमोशनल हो जाना, ये पांच मुख्य कारण हार्ट की बीमारी के। तो हमने कहा था कि भाई आप जल्दी नहीं करना, चिंता नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल ग्रुप को बताया, और फिर हमने देखा कि पांच जब इनको हमने रिसर्च की, हम तो उनके नापते थे, हमारे पास ऐसे क्वेश्चनर्स हैं जिसके द्वारा नाप सकते हैं कि जल्दी कितनी करते हैं, चिंता कितना, गुस्सा कितना है, उदास कितना रहते हो, आपकी सेंसिटिव नेचर है नहीं है, कितनी है, तो उसको बकायदा ग्रेड कर सकते हैं, पॉइंट वाइज नाप सकते हैं। तो हमने पहले नापा और फिर छह महीने बाद नापा, फिर एक साल बाद नापा, तो देखा कंट्रोल ग्रुप में जिनको हमने राजयोग ने सिखाया था उनकी जल्दी चिंता गुस्सा और ही बढ़ गया था, उदासी भी बढ़ गई थी, और जिन्होंने राजयोग सीखा था उनकी जल्दी चिंता गुस्सा उदासी कम हो गई थी। तो मतलब खाली कह देने से जल्दी चिंता गुस्सा कम होता है क्या? नहीं होता है। उदासी कम होती है क्या? नहीं होती है। तो अब जो है मैं आपसे आगे, नेक्स्ट स्लाइड, अब आपसे एक बहुत वाइटल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो हम जाने कि हम हैं कौन। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जैसे एक सीरियस पेशेंट एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आता है और एकदम सीरियस है, एकदम जैसे गया कि गया, बस गैस्पिंग है, आखिरी सांस चल रहे हैं, डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते हैं, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव को, पेशेंट के रिश्तेदार साथ में आते क्या कहेंगे उसको, आई एम सॉरी ही इज गॉन, ही इज ऑलरेडी गॉन, प्लीज टेक हिज बॉडी, है ना, ऐसे बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? जब आया तो सबने कहा सीरियस पेशेंट आया, अभी क्या डॉक्टर किसी भी देश का डॉक्टर, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी देश का डॉक्टर हो, ये बोल सकते हैं अपना पेशेंट वापस ले जाओ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? चाहे भगवान में विश्वास करता हो, आत्मा में विश्वास करता हो ना, तो क्या बोलेगा, बॉडी ले जाओ, है ना, तो क्या निकल गया उसके अंदर से, हवा निकल गई, आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई ना, कि वो तो चला गया, ठीक ऐसे बोलेंगे ना, वो तो चला गया बोलेंगे, वो तो चला गया, आत्मा निकल गया, कहेंगे वो चला गया, ये उसकी बॉडी, बॉडी ले जाइए, ठीक है। तो इसी बॉडी में से अगर इसकी पेशेंट की आखिरी इच्छा थी जाने से पहले, या उसकी कभी की इच्छा थी कि मैं मेरी बॉडी के अंग बेशक किसी के लिए यूज किए जाएं, और इसी हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसको हार्ट की आवश्यकता है, उसका हार्ट बहुत वीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है, कुछ टेस्ट के बाद या टेस्ट पहले से किए हुए हैं, तो इस पेशेंट के हार्ट को इस दूसरे पेशेंट दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ये हार्ट यहां काम नहीं करेगा, कुछ भी करो आप, किंतु दूसरे में काम करना शुरू कर देगा, किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो उसका क्या अर्थ है, वो जिसमें से आत्मा निकल गई उसमें वो हार्ट काम नहीं कर रहा है, आप कुछ मर्जी करिए नहीं चलेगा, किंतु इस हार्ट को निकाल के उसमें लगा, दूसरे में लगाया तो वहां पर कार्य करना शुरू कर देता है और उस आदमी की लाइफ बच जाती है दूसरे आदमी की। इसका क्या अर्थ हुआ कि हार्ट को चलाने वाला कौन, हार्ट अपने आप चलता है क्या, यहां नहीं चल रहा, वहां चलना शुरू कर दिया, कैसे, वहां ड्राइवर है चलाने वाला, यहां ड्राइवर चला गया इसलिए नहीं चल रहा, वहां चल रहा है, ठीक है। तो अर्थात आत्मा हार्ट को चलाती है, ठीक है। हम इसकी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तो साइंटिफिक एविडेंस तो इसके बहुत सारे हैं, किंतु ये बड़ा क्लियरली आज प्रूफ हो चुका है कि आत्मा ही आंखों से देखती है। अगर आत्मा निकल जाए तो आंखें देखेंगी क्या, मुख बोलेगा, कान सुनेंगे क्या, हार्ट चलेगा, खाना पचेगा नहीं पचेगा, आप खाना खा के आए हैं, अगर खाना मगर आत्मा निकल जाए तो क्या होगा, खाना वहीं के में रुक जाए। पोस्टमार्टम में हम ऐसे ही पता लगाते हैं आंखों की मूवमेंट, आपने खाना, हम कहते हैं ना खाना लगभग कितने 9 बजे खाना खाया है, 10 तो उस हिसाब से इतने बजे उसका हुआ, तो खाना जहां रुका हुआ ना उसके हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि आदमी लगभग इतने बजे उसने शरीर छोड़ा हुआ है ना, खाने की मूवमेंट से पता लगाते हैं। तो ये जो है, ये जो बात है कि आत्मा जब तक है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है और एक जैसे उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ब्रेन हमारा जो है इसमें डिफरेंट सेंटर्स हैं, और वो सेंटर्स जैसे आपने देखा होगा ना, अगर छोटा मैग्नेट होता है तो उसके आसपास अगर हम इलेक्ट्रिक वो जो रेत आयरन की जो रेत डाल देते हैं, आयरन की जो डस्ट होती है वो डाल देते हैं, तो उसका एक पैटर्न बन जाता है, और अगर वो मैग्नेट निकाल देते, चुंबक निकाल देते हैं, तो क्या होता है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना हुआ है, और ब्रेन भी कोशिकाओं से बना हुआ है, और उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं। जैसे आप सपोज यहां चोट लग जाए अगर हमारे, या ब्लड क्लॉट हो जाए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा राइट साइड पैरालिसिस हो जाएगी। अगर यहां पर थोड़ी चोट लग जाए या ब्लड क्लॉट हो जाए तो क्या होगा, आवाज चली जाएगी, जीभ है, मुख है, किंतु आवाज चली जाएगी, है ना। अगर यहां चोट लग जाए तो क्या होगा, आंखें हैं किंतु दिखाई नहीं देगा, मतलब ये कंट्रोलिंग सेंटर बने हुए हैं यहां पर सारे, इधर का कंट्रोल, अगर यहां ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा, लेफ्ट साइड चली जाएगी, होता है पैरालिसिस का अटैक होता है ना, सुना होगा आपने, देखा भी होगा कभी शायद। तो ये ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, तो सारे सेंटर हर चीज के, हार्ट का चलने का सेंटर भी है, पेट में खाना पचने का, पेट भरने का सेंटर भी है, टेम्परेचर की तरह जो उसका भी सेंटर है, वो कार्य कैसे कर रहे हैं, आत्मा निकलती है एकदम से और ये कार्य करना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है कि हर सेल में, हर कोशिका में सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, कुछ ऐसे मेटल्स के फाइन फाइन पंप होते हैं, कैल्शियम का पंप होता है। जैसे आत्मा वहां पर है तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय एरिया है, तो उससे क्या होता है कि आत्मा है तो सारा कार्य कर रहा है, सारे सिस्टम कार्य कर रहे हैं, और जैसे ही वो निकल जाता है आत्मा, तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, और आत्मा विद इन 3 मिनट वापस आ जाए फिर दोबारा से कार्य करना शुरू कर देता है। 3 मिनट से ज्यादा देर हो जाए तो क्या होगा, फिर वापस वो सिस्टम खत्म हो चुका होता है, डिसअरे में चला जाता है, टोटल डेथ हो चुकी होती है, फिर नहीं आता आत्मा, आने के बाद भी कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारी बॉडी का बना हुआ। नेक्स्ट स्लाइड, ये तो हमने सुना लाइफस्टाइल के बारे में। अब एक्चुअली हमने एक डेवलप किया प्रोग्राम, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम, हार्ट की बीमारी हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, कोई बीमारी भी हो, किसी बीमारी से भी ठीक होने का तरीका, हड्डियों की बीमारियां हो, हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, उसका नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, बेसिकली सबसे पहली बात हम क्या सिखाते हैं अपने प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हेल्दी लाइफस्टाइल का हेल्दी माना ही क्या है, हील प्लस डाई, डाई माना योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। सबसे पहली बात हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि मुझे खुद को स्वयं ठीक करना है। हेल्थ हमें अपने आप नहीं मिलेगी क्या, अधिकतर हम भारत में क्या समझते हैं, हम अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे, वी टेक हेल्थ फॉर ग्रांटेड, ऐसा होता है क्या, वी हैव टू अर्न अवर हेल्थ, हमें हेल्थ कमानी पड़ती है, हेल्थ अपने आप बनानी पड़ती है, अपने आप हेल्थ नहीं बनेगी। जब आप पैदा हुए तो आपका हाई ब्लड प्रेशर था क्या, डायबिटीज थी क्या, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक थी क्या? तो किसने ब्लॉक की? खुद ने ब्लॉक की ना। हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो गया? कहते कई लोग कहते हैं हमारे जीन्स, हमारे माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर था हमें भी हो गया, हमारे माता पिता को हार्ट की बीमारी थी हमें भी हो गई, हमारे माता पिता को डायबिटीज हमें भी हो गई। ऐसा है क्या? जीन्स आर लाइक सीड्स, जीन जो होते हैं ना वो बीज की तरह से होते हैं। अगर बीज को डब्बे में डालकर रख दो तो क्या होगा? डब्बे में डालकर दो बीज, आपके मूंग की दाल है या गेहूं है तो उसका पेड़ बनेगा? कभी नहीं बनेगा ना। उसे धरती में डालेंगे तो बीज बने, तो उसका पेड़ बनेगा ना। पानी देंगे, हवा लगेगी, गर्मी मिलेगी तो पेड़ बनेगा ना। तो जब ऐसे जीन जब हमें मिलते हैं, मान लीजिए मेरे फादर को हार्ट की बीमारी थी, मेरे फादर को 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ, राइट? तो अब मेरे अंदर वो जीन है। अगर मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार बचपन से जल्दी करने का है, चिंता करने का है, गुस्सा करने का है, उदास रहने का है, थोड़ी थोड़ी बात में मूड ऑफ करने का है, मैं गलत खाना खाता हूं, तला हुआ खाता हूं, पकौड़े समोसे खाता हूं, पराठे खाता हूं, है ना, मिठाइयां ज्यादा खाने का शौक है, एक्सरसाइज करने का शौक बिल्कुल नहीं है, 12 बजे सोता हूं, सुबह 8 बजे उठता हूं, तो क्या होगा? मेरे पिताजी को हार्ट अटैक 65 साल की उम्र हुआ था, मुझे 35 साल की उम्र में हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने क्या किया, उस बीज को विचारों की धरती दी। ये विचार जो होते हैं ना, मन वो माध्यम है जिसके अंदर, मन वो धरती है जिसके अंदर वो बीज जीन पनपते हैं। और एक खाना पीना उसके लिए पानी है ना, और एक्सरसाइज ना करना उसके लिए हवा है, तो क्या होता है, वो बीज जल्दी जल्दी पनपते हैं और वो बीमारी का बड़ा भारी रूप धारण कर लेते हैं। और अगर मैंने इसके बजाय क्या किया होता, मन को शांत रखा होता, सबसे प्रेम से व्यवहार किया होता, खुश रहता और खाने पीने में ध्यान रखता, रोज एक्सरसाइज करता, टाइम पर सोता, 10 बजे सोता, 4 बजे उठ जाता, तो क्या होता, बीमारी मुझे कभी होती, हार्ट अटैक कभी आता? 80 साल की उम्र के बाद आता हार्ट अटैक, तो तब भी आता, कब आता पर? और वो मेरा आखिरी दिन होता है ना। नहीं, कहते 80 साल से पहले अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आपकी अपनी कमाई है, आपने खुद पैदा किया, यू हैव क्रिएटेड योर हार्ट अटैक बिफोर 80 एंड आफ्टर 80 इट इज ए गॉड्स बून। 80 साल के बाद क्या है हार्ट अटैक? वरदान है भगवान का। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है मरने का, शरीर छोड़ने का? हार्ट अटैक। सबसे अच्छी नंबर वन बीमारी कौन सी है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हुआ और चुपचाप चले गए, नहीं, बाकी बीमारियों तो तड़फना पड़ता है, इसमें तड़फना नहीं पड़ता। 80 साल के बाद दर्द भी नहीं होता है, 80 के पहले दर्द हो तो बहुत जोर से दर्द होता है, 80 के बाद अगर हार्ट अटैक हो तो चुपचाप हार्ट अटैक आता है और चुपचाप चले जाता है, ठीक है? ऐसी कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आपके फादर को हाई ब्लड प्रेशर 50 साल की उम्र में हुआ, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप बात बात में गर्म हो जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, जल्दी शुरू हो जाएगा, 30 साल की उम्र में शुरू हो जाएगा। ऐसे डायबिटीज है, डायबिटीज माना क्या, लैक ऑफ स्वीटनेस इन लाइफ। ये देखने में आया, जिन लोगों को जीन होता है और मन में बिटरनेस रहती है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो उनको डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज आज बहुत बढ़ती जा रही है, शायद आपको पता हो, पहले 40 साल की उम्र में डायबिटीज हुआ करती थी, आज 20 साल के लड़कों को डायबिटीज हो रही है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को डायबिटीज हो रही है। कारण क्या, दे फील बिटर अबाउट लाइफ, और व्हेन दैट बिटरनेस इज देयर व्हाट हैपेंस, क्या होता है उससे, हमारे जीवन में करवाट आई, टेंशन आ गई तो क्या होता है, हमारे अंदर चिंता वाले हार्मोन, टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकलते हैं, और टेंशन वाले हार्मोन क्या करते हैं, हमारे लीवर में 500 ग्राम शुगर हमेशा जमा रहती है, वो शुगर रिलीज होती रहती है, उससे शुगर बढ़ती रहती है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो है डायबिटीज का मुख्य कारण हो गया। तो ये हमने लाइफस्टाइल का बताया कि हील डाई, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी कि हमको खुद को स्वयं ठीक रखना है। अगर कोई बीमारी हो भी गई तो मुझे खुद को ठीक करनी है, और मुझे अगर हेल्दी रहना है तो मुझे खुद को, स्वयं को हेल्दी बनाना है, रखना है, पहली बात। दूसरी बात, हेल्दी का मतलब, इसका तरीका क्या है, स्वस्थ, हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ जो शब्द है दो शब्दों से बना है, स्व प्लस था, स्व माना इनर सेल्फ और था मीन्स कॉन्शियस, स्व माना सोल, इनर सेल्फ माना सोल और स्था माना कॉन्शियस, स्व माना हिंदी में कहें तो स्व माना आत्मा और स्था माना स्थित, अर्थात स्वस्थ कौन है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वही स्वस्थ है। तो आप बताइए, आप कितने घंटे स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाँ, तो 24 घंटा क्या रहना पड़ेगा? स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। अब सारा दिन यह अभ्यास करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, हो क्या रहा है? जैसे अमिताभ बच्चन को सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं अमिताभ, जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता हाथ उठाए, सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन। जैसे एक फिल्म में बनता शहंशाह, एक में बनता कालिया, एक में बनता कुली, एक में बनता महान, और भी कई सारी फिल्में होंगी ना। तो अगर अमिताभ बच्चन एक फिल्म में शहंशाह बना और सड़क पे चले तो अपने आप को शहंशाह समझ के चले तो क्या होगा? लोग उसको मानेंगे शहंशाह क्या? और लोग उसको शहंशाह ना माने, उसको टेंशन आती रहे मेरे को शहंशाह नहीं माना, है ना। या वो कुली समझ के चले, कुछ को सामान ना पकड़ाए तो सामान उठा तो उसको टेंशन हो जाए मेरे कुली कुली नहीं समझते, तो उसको क्या होगा? टेंशन हो जाएगी ना। सचमुच ऐसे ऐसा ही हम लोग करते हैं। अब जैसे आप जब आप सभी जो हैं बिजनेसमैन बने हुए हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप जब पैदा हुए तो बिजनेसमैन थे क्या? जब पैदा हुआ था बिजनेसमैन था, हाथ उठाए जरा। सभी अपने आप को हम कहते हैं हम बाप हैं, हम पति हैं, हम मां हैं। पैदा हुए तब मां थे आप? बाप थे क्या? एक्चुअली एट द सेम टाइम वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। एक ही टाइम पर हम बाप भी हैं, पति भी हैं, दोस्त भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, नहीं, और बिजनेसमैन भी हैं। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं, मैं जो पार्ट प्ले कर रहा हूं वो उस पार्ट से, इन रोल से अलग है। जैसे अमिताभ बच्चन शहंशाह भी नहीं है, महान भी नहीं है, कुली भी नहीं है, कालिया भी नहीं है, ठीक है। अमिताभ बच्चन अलग है, वो रोल अलग है, किंतु वो उससे अगर उसमें उसमें अगर घुस के बैठे तो उसको जल्दी भी हो जाएगी चिंता, गुस्सा, उदासी सब आ जाएगी। हमारे साथ ये हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूं ना, प्रशासक पति भी हूं, पिता भी हूं, भाई भी हूं, बच्चा भी हूं, नहीं, दोस्त भी हूं। तो जो मैं हूं वो मैं इससे अलग हूं, इन रोल से अलग। ये जो रोल हम बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस होने से ही, सबसे मुख्य बात यही है, फर्स्ट चेंज इन हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम इज चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। अपने आप को देह समझने के बजाय अपने आप को डॉक्टर, बिजनेसमैन, मां बाप समझने के बजाय हम अपने आप को क्या समझें? क्योंकि इस बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस से ही टेंशन होती है, इस बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस से ही जल्दी पैदा होती है। अब समझिए, आप हमारी जो माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जब अपने आप को मां समझते तो क्या होता है? तीन बच्चे हैं आपके, एक पति है ना, सास ससुर भी हो सकते हैं, तो क्या मन में आता है? जैसे मां समझेंगे तो क्या होगा? जल्दी आएगी मन में चिंता पैदा होगी, गुस्सा आएगा, उदास हो जाएंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, आपकी कोई बात नहीं होगी तो, और सेंसिटिव नेचर बन जाएगी। ऐसे आप जब अपने आप को बिजनेसमैन समझते तो क्या? जल्दी चिंता, गुस्सा, उदास सब पैदा हो जाती है। तो ये जो है मुख्य कारण है इनकी प्रॉब्लम्स का, ठीक बात है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। तो हम समझें कि जो ह्यूमन बीइंग शब्द है दो शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द निकला है ह्यूमस से, ह्यूमस माना मट्टी, सॉइल, और बीइंग माना लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स माना सोल, आत्मा। तो ह्यूमन शब्द ह्यूमन माना मिट्टी और बीइंग माना आत्मा। तो एक इंसान दो चीज से बना है, एक मट्टी से, शरीर रूपी मट्टी से, और आत्मा से, ठीक है। अब ये देखेंगे, जब भी हम अपने आप को सॉइल कॉन्शियस समझते हैं या बॉडी समझते हैं तो इससे हम क्या होता है, हमारे अंदर आईनेस और माइनस पैदा होती है, मैं और मेरापन पैदा होता है, और मैपन से क्या होता है, ईगो पैदा होती है, और ईगो से टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है। टाइप ए बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? हर चीज में जल्दबाजी करना। ऐसा आदमी क्या करता है, टाइप ए आदमी क्या करता है, हर चीज में जल्दबाजी करता है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और उसकी नेचर जो होती है परफेक्शनिस्ट, आइडियलिस्टिक, हर चीज में वो क्या करता है, मेरे सामने होना चाहिए, मैं अपने हाथ से करूं तो ज्यादा अच्छा है, मेरे सामने हो जाए तो अच्छा है, जैसे मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, अगर वो वैसे ना हो तो उसको गुस्सा आता है। तो और ऐसा आदमी एक समय बहुत सारे कार्य करता है, खाना भी खाएगा, टेलीफोन भी चलेगा, टीवी भी चल रहा है, नीचे अखबार भी रखा हुआ है और बातचीत भी हो रही है। और ऐसे लोगों को ही, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक्स हो, चाहे पैरालिसिस के अटैक्स हो,
शांति जो भी शांति।
वैसे तो मुझे भी शांति मन जाना था पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो ये जो आईनेस है इससे ईगो पैदा होता है, ईगो से फिर ये बिहेवियर पैदा होता है। और टाइप ए बिहेवियर एक्चुअली आप सब देखें अपने अंदर, आप सब अपने अंदर देखेंगे सबके सब टाइप ए हैं, है कि नहीं है। टाइम का प्रेशर, टाइम पे काम होना चाहिए, काम का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, यही तीन बातें मुख्य हैं। और यही कारण है हर बीमारी का, बार बार इन्फेक्शन होने का, बार बार हार्ट की प्रॉब्लम होने का, छाती भारी होने का, कमर का दर्द होने का, गर्दन का दर्द होने का, हर बीमारी कारण यही है। तो ये जो है क्यों पैदा होता है, मैपन की वजह से। और माइनस से क्या पैदा होता है, अटैचमेंट, मोह पैदा होता है। और मोह से चिंता, लोभ और काम विकार पैदा होता है। और जब भी हम इस आईनेस या माइनस को खतरा महसूस करते हैं तो क्या होता है उससे, ये तो दो चीज पैदा होती हैं, डर और गुस्सा। डर गुस्सा इसके दो पहलू हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो जहां आप काम करते हैं, अगर आपसे कोई बड़ा है वो आपके प्रति आपकी अथॉरिटी को नहीं मानता है तो उससे तो डर लगता है। और जो आपका सबॉर्डिनेट है आपकी अथॉरिटी को ना माने तो क्या होगा, उसके प्रति गुस्सा पैदा होता है। तो ये जो है एक इसके दो पहलू हैं। और जब आप जितना अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइप के लोग होते हैं ना, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, तो ये जो अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, उनको वो उदास हो जाता है, अपने आप को धिक्कारने लगते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अगर आपने सारा दिन काम किया हो और आपको शाम को कोई आदमी हटता है, आप क्या सारा दिन आपको टाइम वेस्ट किया, तो आप उदास हो जाएंगे ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए उदास होंगे। किंतु जब आप अपने आप को डांट लगाते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं, तो आपके अंदर गहरा डिप्रेशन हो जाता है, उसमें फिर दवाई से ही बाहर आ सकते हैं। दूसरा आपको गाली दे उसे इतना नुकसान नहीं है, किंतु खुद को जब अपने आप को आपने किया, एब्यूज किया, तो क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। और जब ये सब बातें अंदर होती हैं तो इससे आपकी सारी एनर्जी खत्म होती रहती है ना? और एनर्जी खत्म होने से क्या होता है, आप आलसी या तो आलस पैदा होता है या फिर केयरलेस हो जाते हैं। और इन सब बातों से, ईगो से, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, ग्रीड, लस्ट, फियर, एंगर, डिप्रेशन, ये क्या करते हैं, अंदर आसानी खत्म कर देते हैं, जीवन में जीने की आसानी खत्म हो जाती है। और इसी को कहते हैं डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, कैसे कहते हैं, डिस ईज कॉन्शियस। और जैसा हमारा मन, मतलब हमारे मन में अशांति पैदा हो जाती है, और अशांति पैदा होने से क्या होता है, ये देखने में आया है आज के समय में कि जब हम जैसा हम मन हमारा होता है उसके अनुसार ही हम खाना खाते हैं। अगर आपके मन में कड़वाहट है आप मीठा खाना पसंद करेंगे, आपका मन ड्राई हो गया तो आप तला हुआ खाना पसंद करेंगे, घी वाली चीज खाने पसंद करेंगे, आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। तो ये जो है, और अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं, सोल कॉन्शियस है, तो क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ डिग्निटी होती है और टाइप बी हो जाए, आप टाइप बी बन जाते हैं, इजी गोइंग नेचर बन जाती है। टाइप ए पर्सन तो क्या करता है, फॉलोअर्स बनाता है, और टाइप बी पर्सन लीडर्स बनाता है, दूसरों को अपने काम को बांट देता है, आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए। टाइप ए आदमी हर काम अपने आप करना चाहता है या अपने नाक के नीचे चाहता है। टाइप बी आदमी क्या करता है, काम बांट डेलीगेट कर देता है और दूसरों को एनकरेज करता है, नहीं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब पे विश्वास करता है। तो वो टाइप बी आदमी इसलिए रिलैक्स रहता है, उसके पास टाइम है, खाना खाने का भी टाइम है, वॉकिंग करने का भी टाइम है, उसके पास ठीक टाइम सोने का भी टाइम है, उठने का भी टाइम, और परमात्मा की याद करने का समय भी है। और टाइप ए आदमी क्या है, उसके पास टाइम ही नहीं है, कहता डॉक्टर साहब मुझे फुर्सत ही नहीं है, आप क्या कहो, मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं, खाना खाने की फुर्सत नहीं, मरने का, ऐसे बोलते हैं। हाँ बिजनेसमैन तो ऐसे ही बोलते हैं, कभी मेरे पास आते हैं कि हार्ट पेशेंट ही सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, तो हार्ट पेशेंट तो बिजनेसमैन ही बनते हैं, है ना, बहुत आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम बात क्या बात करते हो, मैं सुबह उठ के वॉकिंग करने जाऊं, सुबह उठ मैं टाइम पे खाना खा लूं, कैसे हो सकता है, मेरे को तो मरने की फुर्सत नहीं है। तो वो ऐसा बोलते हैं, क्यों, कारण क्या, क्योंकि हर काम उनको दूसरों पर विश्वास नहीं है, हर काम अपने आप अपने सामने करना देखना चाहते हैं, अपने आप को अनुभवी समझते हैं, दूसरों को नहीं चाहते, क्योंकि बस इसलिए उनके टाइम नहीं होता। तो ये जो है टाइप बी बन जाते हैं, और आत्मा के सात गुण होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये सात गुण आत्मा में, जैसे पानी में ठंडा है ना पानी की नेचर, ऐसी आत्मा की नेचर शांति है, प्रेम है, खुशी, आनंद है। और बॉडी की नेचर और रोल की नेचर है, जैसे आग की नेचर क्या, गर्मी। अगर आप अपने आप को बॉडी समझते हैं या अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन समझते हैं या मां बाप समझते हैं, तो उसमें जल्दी चिंता, गुस्सा समाया हुआ है। और अपने आप को जैसे ही आप आत्मा समझेंगे तो आपके अंदर, उसके अंदर शांति, प्रेम, खुशी अपने आप समाई हुई है, तो इससे आप हेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है आज के जमाने में, आज के सिस्टम में बीमारी का इलाज क्या कर रहे हैं, सारा का सारा जितनी दवाई चल रही है, जितनी रिसर्च हो रही है, सारी बॉडी के ऊपर हो रही है। जितनी दवाई बन रही है बॉडी की बन रही है। कोई आत्मा की दवाई बनी है क्या, मुझे बताइए? कोई गुस्से की दवाई बनी है क्या? एक गोली खाओ गुस्सा खत्म हो जाए सदा के लिए, ऐसे है गोली को? एक गोली खाया चिंता खत्म, एक गोली खाया उदासी खत्म, ऐसे है कोई दवाई बनी है क्या? आत्मा की दवाई बनी है हैं जी? हाँ, वो दवाई तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, है ना? एंड नॉट इवन ए सिंगल पेनी इज बीइंग स्पेंट ऑन रिसर्च और स्टडी ऑफ द बीइंग। आत्मा की ये ना कोई रिसर्च हो रही है, ना आत्मा के लिए कोई दवाई बनी है जिससे कि आत्मा की बीमारी ठीक हो सके, है ना? इसलिए हर बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है, सारा पैसा कहां जा रहा है? मिट्टी पे लगा रहे हैं ना सारा पैसा, तो कहां जा रहा है सारा पैसा? मिट्टी में जा रहा है ना, नहीं? और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जो जो डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं, जो जो पेशेंट हॉस्पिटल बढ़ते हैं बीमारियां बढ़ती हैं। कम होनी चाहिए ना बीमारी, तो डॉक्टर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, टीवी पे, रेडियो पे सब कुछ आ रहा है, तो लोग नहीं कर पा रहे ना। कारण ये है क्योंकि बींग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और इनक्यूरेबल डिजीज, देखिए आज आपको हाई ब्लड प्रेशर है, 20 साल से हाई ब्लड प्रेशर है, 20 साल से गोली खा रहे हैं, नहीं खा रहे आप, तो भी क्या कहलाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट कहलाते हैं, नहीं कहलाते? डायबिटीज आपको 25 साल से है, डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, डायबिटीज ठीक हो गई, तो भी डायबिटीज है आपको। आपको जो है आपने, आपको हार्ट की बीमारी है, बाईपास करा ले, तो क्या कहलाते हैं, तो भी हार्ट पेशेंट कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? कैंसर के हो, कैंसर हो गया, कैंसर का इलाज करा लिया और उसके बाद क्या कहलाते हैं, कैंसर खत्म हो गया, तब भी कहते कैंसर का पेशेंट है ना? तो ये बीमारियां इनक्यूरेबल बीमारी कहलाती हैं, इनक्यूरेबल, राइट? एक्चुअली जिस आदमी ने शब्द कॉइन किया था उसका मतलब ये नहीं था कि ये बीमारी असाध्य है, इसका इलाज नहीं हो सकता, उसका अर्थ कुछ और था, उसका अर्थ था ये बीमारी का मतलब है इन प्लस क्यूरेबल, ये बीमारी क्यूरेबल है अगर क्या करो तो, इन जाओ तो, अंदर जाओ तो ये बीमारी क्यूरेबल है। जैसे आप देखना, आपने सुना होगा अभी जो हमारा जो रिसर्च हुई ना, ये रिसर्च क्या हुई, हार्ट की बीमारी क्यों हुई, उसके कारण में जाओ, अंदर जाओ, तो हार्ट की बीमारी आर्टरीज खुल गई, ब्लॉकेज खुल गए। और ऐसे ही अगर हमारी, जैसे चाहे वो कैंसर हो गया, कैंसर फैल चुका है, काफी लोगों ने इसका अभ्यास किया, किताबें छपी बाद में उसके ऊपर, उनके कैंसर ही खत्म हो गए। तो ये इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब यह है कि ये बीमारियों का इलाज किसी भी ऑपरेशन से या किसी दवाई से नहीं हो सकता है, इसका इलाज सिर्फ अंदर जाने से हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है बॉडी कॉन्शियसनेस। जब आप बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब पैदा होते हैं, और उससे आपके टीम, मनमाना टीम, टीम मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका एटीट्यूड और आपकी स्मृतियां नेगेटिव होने लगती हैं, आपके मन में गलत गलत बातें आती जाएंगी। देखो आप क्रोध करके देखो, आपका मन खुश, आपके मन में क्या बातें आएंगी, विचार कैसे पैदा होंगे, भावना कैसी पैदा होगी, एटीट्यूड कैसा पैदा, स्मृति कैसी आएंगी? जब पति पत्नी में कभी लड़ाई होती है आपने देखा, आप तो सभी अनुभवी है ना, पति पत्नी की लड़ाई तो आप रोज ही, कभी कभी हफ्ते में एक दो बार तो हो ही जाती होगी ना। कभी पति पत्नी की लड़ाई होती है तो कभी कभी याद आता है कि पत्नी को याद आता है कि आपने मेरे को ये दिलाया था, आप क्या बोलते हैं आपस में, जब से मेरी शादी हुई है आपसे 20 साल हो गए, तब से क्या मैंने एक दिन सुख का नहीं देखा है ना, यही बोलते हैं ना, और मेरे को कुछ दिलाया नहीं, मैं तो बहुत दुखी, तब से दुखी हूं। और पति क्या बोलता है, जब से मेरी शादी आपके साथ हुई है तो क्या हुआ, मैंने हंसना ही भूल गया हूं, पहले तो कभी कभी हंसता भी था, है ना? कभी पत्नी को याद आएगा आपने मेरे को कल ये बना के खिलाया था, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा किया था, बोले? कभी नहीं बोले, क्योंकि उस समय क्या है, जब आप गुस्से में हैं तो आपके अंदर जितनी मेमोरीज है ना, हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में मेमोरीज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टोर होती है, तो फिर गुस्से में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, 25-30 हो जाती है, तो उस समय 30 पर जो पहले की मेमोरी स्टोर है वही बातें याद आती जाएंगी, 5 साल पहले वाली, 10 साल पहले वाली, 15 साल पहले वाली, 20 साल पहले वाली, वो बातें खुल खुल फाइलें खुलती जाएंगी, कंप्यूटर में जैसे फाइल खुलती है ना, ऐसे फाइल खुलती जाएंगी, सारी बातें नेगेटिव याद आएंगी, एक भी पॉजिटिव याद नहीं आएगी। और अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं, आप मान लीजिए अभी आप 5 फ्रीक्वेंसी पे आ गए, आपने मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। अगर आप उसको याद करते हैं तो क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी 0 के पास आती जाएगी। और दुनिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देहधारियों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंसानों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसी की 25 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, उसको याद करेंगे तो क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी उनके जितनी हो जाती है, 25-30 हो जाती है। और 25-30 होने से क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो वाली फाइलें खुलती हैं नेगेटिव वाली। और पांच वाली कौन सी होंगी, आप शिमला गए थे, आप हिल स्टेशन पे गए थे, वहां बहुत शांति थी, बहुत नेचुरल एटमॉस्फेयर था, है ना, कोई अच्छी अच्छी बातें जो पॉजिटिव बातें हैं, साक्षात्कार हुआ था, कहीं मंदिर में गए थे, वो वाली फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स आपको आती जाएंगी। तो ये जब भी आपके अंदर बॉडी कॉन्शियस आएगा, देह अभिमान आएगा या रोल कॉन्शियस आएंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव बातें आएंगी, टीम आपकी नेगेटिव हो जाएगी, एनर्जी ब्लॉक। ये है आपका, ये आत्मा है, ये मन है, ये तन है, तीन चीजें, आत्मा मन और तन। जब आत्मा से एनर्जी जो है, ये 7 एनर्जी आत्मा के अंदर होती है, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस एंड ब्लिस एंड पावर्स, ये बॉडी में बहती रहती हैं, और ये मन इसका माध्यम है, मन के द्वारा बहती हैं। और मन में जब टीम नेगेटिव हो गई तो एनर्जी ब्लॉक हो गया और उससे बॉडी में डिसईज। अब मान लीजिए आपके यहां खाने की नाली है ना, नाली ब्लॉक हो जाए खाने की, मुंह से खाना खाएं तना पहुंचे तो क्या होगा, पेट में बेचैनी होगी नहीं होगी। तो यही है, आत्मा यहां है, मन माध्यम है और बॉडी को एनर्जी पहुंचनी चाहिए। बॉडी के हर अंग को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। वो एनर्जी नहीं पहुंच रही है तो बॉडी के अंगों में बेचैनी पैदा हो जाती है। और माध्यम है मन, मन माना टीम, टीम माना विचार, भावनाएं, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, है ना। तो नेगेटिव टीम कैसे पैदा होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से। नेगेटिव टीम कैसे पैदा होती है, रोल कॉन्शियसनेस। इसकी बजाय अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाए तो क्या होगा, आपके अंदर जो है ये 7 गुण जो है टीम पॉजिटिव बना देंगे और एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है और बॉडी में हेल्थ कॉन्शियस की फीलिंग आ जाती है। और परमात्मा से कनेक्शन भी तभी मिलता है जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, देह का पिता परमात्मा नहीं है, डॉक्टर का पिता परमात्मा नहीं है, बिजनेसमैन का पिता है क्या परमात्मा? अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन समझ के परमात्मा को याद करो, परमात्मा कुछ देखेगा क्या आपको? परमात्मा व्यापारी का बाप नहीं है, परमात्मा आत्मा का बाप है, ठीक है। परमात्मा बाप का बाप है क्या? आप अपने आप को बाप समझ के याद करें परमात्मा को तो आपको मिलेगा कनेक्शन? नहीं मिलेगा। तो ये जब भी आप अपने आप को सिर्फ यही फॉर्मूला को आप याद कर लें तो आपके अंदर हेल्थ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, तो ये तरीका है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल माइंड बॉडी मेडिसिन। इसमें आत्मा, मन और तन, इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, तीनों का आपस में जब तक बैलेंस ना हो तब तक हम हेल्दी लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते हैं। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करने के लिए बेस्ट टाइम है 4 बजे। हमारी बॉडी जो है, हम इंसान जो है 3 डायमेंशनल है एटलीस्ट, और 4th डायमेंशन टाइम की है। ये देखने में आत्मा अगर मन से परमात्मा से कनेक्शन कब बेस्ट टाइम है, 4 बजे का टाइम, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। एक्चुअली 4 बजे क्यों उसे कहा जाता है, क्योंकि 4 बजे पिट्यूटरी ग्लैंड से 14 हार्मोन निकलते हैं, यहां से 14 हार्मोन निकलते हैं, जो कि अगले 24 घंटे का स्टॉक है। अगर आप यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से, यहां पर होती है इसके नीचे, आत्मा के बिल्कुल नीचे थोड़ी सी पोजिशन उसकी होती है, उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं बॉडी की। 2 से 5 के बीच में टाइम एक्शन निकलने का उसका। अगर उस समय आप आधा घंटा आनंद की स्थिति में चले जाएं 2 से 5 के बीच में, तो क्या होगा, आपका जो है वो अगले 24 घंटे का स्टॉक निकल जाएगा हार्मोन्स का। वो हार्मोन्स ऐसे रस हैं जो पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन करते हैं, और 24 घंटे अगले 24 घंटे के लिए आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, आपके अंग आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, शांति खुशी बनी रहेगी। नहीं तो सारा दिन क्या होगा, सारा दिन बॉडी में कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अंग साथ नहीं देंगे आपका।
तो सोते रहेंगे जब भी हार्मोन्स तो निकलेंगे,
वही मैं आपको बताता हूं क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा इसके ऊपर कि 4 से 5 जो वो नींद क्या, फिर नींद की साइकिल में मैं आपको बताऊंगा। पहला जो सुबह 4 से 5 आनंद की स्थिति होनी चाहिए, नींद में आनंद थोड़ी ना आता है क्या, नींद में आनंद नहीं होता, आनंद में चाहिए। वो आनंद कब पैदा होगा, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। तो वो जो है, आप आधा घंटा उस स्टेट को एंजॉय कर लीजिए, तो अगले 24 घंटा आप एकदम सारा दिन जैसे सुबह से ना ऐसे शाम को अफ्रेश मिलेगी, जरा भी आपके इरिटेशन नहीं आएगी, चिंता गुस्सा नहीं आएगा, जल्दीबाजी होगी नहीं। तो ये आधा घंटा, इसे दादी ने कहा ना आपको आज कहा ना, उठते ही क्या करो, परमात्मा को याद करो, और उसका नियम ये है। फिर दूसरी बात, मन के लिए, मन के जो हार्मोन्स हैं उनका कनेक्शन यहां पर एड्रेनल ग्लैंड से है। 8 बजे चिंता वाले हार्मोन निकलते हैं यहां से, दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है। तो 4 से 8 बजे तक आपने जो किया, जो सोचा, उसका असर के हिसाब से यहां चिंता वाले हार्मोन निकलने वाले। और चिंता वाले हार्मोन क्या करते, 2 चीज पैदा करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, ये डर या गुस्सा, ये डर या लड़ाई, भागना या लड़ाई, ठीक है। तो अगर वो आपने 4 से 8 अपने मन को शांत रखा है तो आपके वो हार्मोन कम निकलेंगे चिंता वाले, उसके लिए खुशी वाले हार्मोन निकल आएंगे। होता क्या है कि हम 4 बजे उठते हैं, हमें क्या चाहिए, जैसे हम 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, क्या चाहिए हमें सबसे पहले, एक तो बेड टी चाहिए और दूसरा एक न्यूज़पेपर चाहिए। टी क्या करती है, टी हमारे हार्ट की धड़कन 8 बढ़ा देती है, धड़कन 8 बढ़ जाती है। और न्यूज़पेपर में क्या होता है, इसे बैड न्यूज़पेपर या गुड न्यूज़पेपर, तो कैसी टीम होती है, इसमें कैसे विचार होते हैं, कैसी भावनाएं होती हैं, कैसे एटीट्यूड्स होते हैं, कैसी स्मृतियां होती हैं, नेगेटिव और टेंशन वाली बातें होती हैं, तो क्या करेगी आपका हार्मोन ज्यादा निकल जाए, आपकी चिंता वाले हार्मोन ज्यादा निकलेंगे। तो उठते ही कभी अखबार नहीं पढ़ना है और बैटरी नहीं पीनी है, ठीक है। उठते ही नींबू पानी पियो, 1 गिलास पानी लो, उसमें शहद डाल लो, और डायबिटीज वाले नहीं डालना, बाकी नींबू सभी डाल कर लीजिए, चाय पीना छोड़ दो, और अखबार की बजाय क्या करो, अखबार नहीं पढ़ो, साइलेंस में रहो और अच्छी को किताब पढ़ो। ये तो सेंटरों पे हमारे मुरली सुनाई जाती है ना, 6, 6:30, 7:30 मुरली सुनाते हैं, तो मुरली सुनो, वो परमात्मा के महावाक्य है। तो हमारी टीम पॉजिटिव हो जाएगी और हार्मोन्स खुशी वाले निकलेंगे, फिर सारा दिन जो डर रहता है ना मन में और गुस्सा रहता है, लड़ाई करने का दिल करता है, वो नहीं होगा। तो 2 चीज अगर आपने कर ली तो आपका मन पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, फिर फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में फिजिकल एनर्जी है, वो मिलती है प्रॉपर डाइट से। सुबह 8:30 बजे नाश्ता करो, 8 से 8, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8, शाम 8 बजे तक हमारा बॉडी वॉशिंग मोड में, उसमें नरिशिंग मोड में होती है, उसमें हम सॉलिड फूड खा सकते हैं। और रात को 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक हमारी बॉडी वॉशिंग मोड में है। उसके बाद खाना सॉलिड फूड खाना वो खतरनाक है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, जब वॉशिंग मोड में है और नरिश और उसमें उस मोड में है, डालने के कपड़े डालने के मोड में, कपड़े वॉश जब हो रहे हैं उसमें आप सर्फ डालो तो क्या होगा, शुरू में डालते हैं सफर सरफ, तो जब रिंसिंग कर रही है तो डालें तो कपड़े साफ होंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो ऐसे हमारा सिस्टम बना हुआ है, 8:30 ब्रेकफास्ट करो, 1 बजे लंच करो, शाम को डिनर करो, मतलब 7, 7:30, 8 बजे तक कर लो, 8 बजे के बाद नहीं, कुछ जहां तक हो सके 8 बजे से पहले करो। सुबह का ब्रेकफास्ट राजा की तरह करो, लंच मिडिल क्लास आदमी की तरह करो और डिनर माइजर की तरह करो, क्योंकि रात को क्या करना, आपने सोना है ना रात में सिर्फ। तो आजकल उल्टा करते हैं लोग, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, लंच थोड़ा सा करते हैं और डिनर में भारी डिनर करते हैं, उससे पहले तो खाना खाएं, कई चीजें खाते हैं, उसके बाद स्वीट डिश खाते हैं, है ना, सब आइसक्रीम भी खाते हैं, ऊपर से फिर आइसक्रीम भी खाते हैं। तो इसलिए वो सबसे बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी होने का, क्योंकि खाया ना, और मोटे भी इसी कारण से होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी जी कहां होगी, यूज तो हुई नहीं, सारी बॉडी पर जमा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सुबह उठ करके अंकुरित मूंग और मेथी दलिया सब्जी चपाती जो भी खाए, और साथ में 1 कप दूध पी लीजिए बिना चीनी के, चीनी खाना बहुत खतरनाक है, ठीक है। और उसके बाद 1 बजे लंच करिए, पहले सलाद खाइए, फिर सब्जी रोटी खाइए, दाल खा सकते हैं, और शाम के टाइम सब्जी रोटी बस, जिसमें शाम के टाइम दाल कढ़ी चावल ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, उससे नुकसान होता है, पनीर वगैरह नहीं खाना चाहिए, स्वीट डिश भी नहीं खानी चाहिए, सोते टाइम 1 कप दूध पी लीजिए। तो ये डाइट और एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज क्या होती है, सुबह जब सनराइज होता है सनराइज के साथ ही आधा घंटा वॉकिंग कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, और शाम को सनसेट के साथ आधा घंटा टहल लीजिए, और सोना 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए, और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन यूज करिए, प्रॉपर डॉक्टर से जो हिसाब किताब है हमारा, ब्लड प्रेशर डायबिटीज है तो उसका भी इलाज प्रॉपर कर लीजिए। तो ये तीनों एनर्जी का बैलेंस, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल और फिजिकल, तीनों का बैलेंस होगा तब हम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। खाली अगर हम योग करें, खाली अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, या खाली एक्सरसाइज, खाली ठीक खाना खाएं, ठीक एक्सरसाइज करें, ठीक नींद करें और खाली दवाई खाएं, उससे भी हम ठीक नहीं रहने वाले। तीनों का बैलेंस होगा तभी हम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यही राजयोग है। राजयोग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ। परमात्मा से हम क्यों कनेक्शन जोड़ते हैं? क्योंकि परमात्मा सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर है। तो जितनी हमारे अंदर एनर्जी भर जाती है फिर बॉडी को मिलती रहती है। हमें क्या चाहिए? सबको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए। तो वो ये तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, 4 से 8 का टाइम वो अपने लिए रखें, बाकी टाइम सारा दिन हम सेवा में लगाएं। 4 बजे उठ जाएं और आप देखेंगे 4 बजे उठकर आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, अब मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी हार्ट है, इसकी आर्टरीज हैं, ये ब्लॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बस अब फिनिश कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, ये देखिए नॉर्मल आर्टरी जो होती है ना वो तो इलास्टिक होती हैं, खुल जाती हैं डिमांड बढ़ने पर, और जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, और जब इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो फिर छाती में दर्द होता है, और ये आर्टरी पूरी की पूरी देखिए लगभग पूरी बंद हो गई है। ये दीनदयाल नाम है पेशेंट का, जयपुर का पेशेंट है, 52 साल का। इसने फिर दोबारा एंजियोग्राफी जब कराई तो देखिए पूरी की पूरी आर्टरी इसकी खुल गई है ना, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये वाली आर्टरी, ये जो ये आर्टरी है, ये जो वाइट देख रहे हैं ना पूरी की पूरी खुल गई है। तो इसका क्या हुआ? 2 लाख रुपए बचा, नहीं बचा। तो इसने क्या किया? इन्वेस्ट इन हेल्थ फॉर अल्टीमेट वेल्थ, है ना। 2 लाख रुपए इसने बचाया ना, कैसे बचा है ना। और इसके बाद इसने क्या किया? खाली अपना नहीं बचाया, इसके बाद कम से कम इसने 100 पेशेंट्स को जयपुर में, 100 से भी ज्यादा लोगों को ये तरीका सिखाया, और उससे उनकी भी आर्टरीज, उनको भी बाईपास बच गया। तो कितने पैसे बच गए? 2 लाख × 100 कितना हो गया? 2 करोड़ रुपए बचे ना। तो ऐसे उसकी देखिए ब्लॉकेज बच गई ना। नेक्स्ट लाइफ, और लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाईपास करने के बाद भी आप क्या कहलाते हैं? हार्ट पेशेंट। अभी ये हार्ट पेशेंट नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं दिल वाले, दिल वाला बन गया, ठीक है अभी तो एकदम बढ़िया है ना। ये देखिए यहां ब्लॉक है आर्टरी, देखिए पूरी की पूरी खुल गई है। नेक्स्ट लाइफ, ये देखिए यहां से लेके यहां तक आर्टरी ब्लॉक है ये, और देखिए जब इसने फॉलो किया तो पूरी आर्टरी खुल गई। नेक्स्ट लाइफ, ये देखिए यहां 100% ब्लॉक है, देखिए पूरी की पूरी खुल गई। नेक्स्ट लाइन, ये देखिए यहां 100% ब्लॉक है, ये देखिए पूरी की पूरी यहां से यहां तक खुल गई। नेक्स्ट लाइन, ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, देखिए है ना, जगह जगह ब्लॉक्स हैं यहां पर, और देखिए पूरे इसके सारे ब्लॉक्स खुल गए। मतलब जो चीज 40 साल में पैदा हुई वो सिर्फ 1 साल में ही खुल गई। राजयोग का, डाइट का, और एक्सरसाइज, और प्रॉपर समय पर सोना, प्रॉपर समय पर उठना, उसका प्रयोग करने से। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, देखिए ये ब्लॉक था, यहां पर ब्लॉक था, देखिए दोनों के दोनों ब्लॉक खुल गए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, देखिए ये ब्लॉक था, यहां पर ये खुल गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये पूरे ब्लड के ब्लॉक खुलते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब जो हार्ट अटैक होने के बाद, हार्ट सुना होगा आपने, डेड हो जाता है ना, हार्ट डेड हो जाता है और हार्ट बड़ा हो जाता है। 2 हार्ट अटैक हो गए तो हार्ट काफी मसल डेड हो जाती है, तो हार्ट इतना बड़ा हो गया, एनलार्ज हार्ट हो गया। और जब इसने इस प्रोग्राम को फॉलो किया तो ये हार्ट की देखिए आर्टरीज, हार्ट का फिर दोबारा हार्ट छोटा हो गया, मतलब हार्ट का जो एनलार्ज हार्ट हो गया था, हार्ट की मसल डेड हो गई थी, इवन डेड मसल भी दोबारा से चालू हो गई, मतलब वो नई बन गई। ठीक है, देखिए इतना बड़ा हार्ट था एनलार्ज, और अभी ये फिर नॉर्मल छोटा साइज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो है इसी पेशेंट का, देखिए ये वही हार्ट का बड़ा साइज और ये छोटा साइज। नेक्स्ट स्लाइड, ये ब्लॉक था, देखिए ये ब्लॉक यहां से खुल गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए एक पेशेंट का हार्ट की पंपिंग पावर सिर्फ 20% रह गई थी। 20% माना अब पेशेंट 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। और फिर जब इसने प्रोग्राम को फॉलो किया तो हार्ट की, नेक्स्ट स्लाइड, हार्ट की पंपिंग पावर वापस 50% नॉर्मल हो गई। ठीक है, आज पेशेंट कितने साल से अब जिंदा है बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए यहां ब्लॉक था 100% और ये 100% ब्लॉक भी खुल गया, पूरी आर्टरीज खुल गई। और जो कंट्रोल ग्रुप माना, जिन्होंने इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने राजयोग फॉलो नहीं किया, डाइट और एक्सरसाइज फॉलो की, सेम डाइट सेम एक्सरसाइज फॉलो की, तो राजयोग फॉलो नहीं किया, उनका देखें जरा क्या हुआ। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट देखिए आप ये ब्लॉक देखिए और ज्यादा बढ़ गए। देखिए पहले की एंजियोग्राफी में ये ब्लॉक है और सारे ब्लॉक बढ़ गए। तो खाली डाइट एक्सरसाइज से ठीक नहीं होते हैं, ये ध्यान रहे। राजयोग हमें क्या करता है? शक्ति देता है, पहले मन की शक्ति, ताकि हार्ट में जा सके। हार्ट को चाहिए प्रेम, प्रेम की शक्ति बहती है हार्ट की नसों में, उतना ही फिर हार्ट की नसों में खून बहता है। और हम डाइट को भी अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, देखिए ये ब्लॉक था और ही ब्लॉक बढ़ गया यहां पर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, 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 इसको निकाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये हमारा तरीका है हमें हार्ट की अगर ब्लॉकेज खोलनी है तो बी नेचुरल, पहली फॉर्मूला है बी नेचुरल। हम कौन है? हम दे नहीं है, हम रोल मतलब हम माता पिता या बिजनेसमैन नहीं है, हम कौन है? सभी आत्मा है। आई एम ए नॉलेजफुल प्योर पीसफुल लवफुल हैप्पी एंड ब्लिसफुल सोल, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, नेक्स्ट स्लाइड, ईट नेचुरल, नेचुरल खाना खाओ, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, फ्रेश खाओ, फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, है ना, ताजे फल लेकर के आओ, ताजे खाओ, ताजा खाना ताजा खाओ और परमात्मा की याद में खाओ। नेक्स्ट स्लाइड, और लास्ट जो बात है वो है बी इन द लैप ऑफ नेचर, मॉर्निंग वॉक करो आधा घंटा सनराइज के साथ और आधा घंटा इवनिंग वॉक स्ट्रोल करो। तो ये जो है इसका फॉर्मूला है कोई बीमारी से बचने का भी, बी नेचुरल, बोलो सभी, बी नेचुरल, ईट नेचुरल एंड बी इन द लैप ऑफ नेचर। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बता, ये तो बात समझ आई सभी को? अभी मैं एक बात, मैं लास्ट अनाउंसमेंट आपको कर रहा हूं। अभी हमने, क्योंकि हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, हमने क्या शुरू किया है, लाइट ऑन कर लीजिए, हमने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है। एक तो ये प्रोग्राम तो चल ही रहा है, जिनको हार्ट की बीमारी हो गई है उनकी एंजियोग्राफी कराई गई है, वो बाईपास नहीं कराना चाहते, एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते, तो हमें वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, एक एप्लीकेशन और अपनी एंजियोग्राफी रिपोर्ट लगा करके भेजते हैं कि हमें क्या तकलीफ है, हम क्या, और हमें आप बुलाइए। तो वो तो एक हमारा प्रोग्राम चलता है, उसे सिक्योरिटी प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें उसको बाईपास ना कराना पड़े। किंतु इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बीमारी हमको हो ही नहीं, एक मिनट बैठे, बीमारी हमको हो ही नहीं। आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको जैसे मान ली टेंशन बहुत होती है, जल्दी चिंता गुस्सा की बीमारी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, है ना, आपको स्मोकिंग पहले आप करते थे, शराब पीते थे, है ना, या आपको मोटापा है, या आपको, आपकी फैमिली में हार्ट की बीमारी है, माता पिता को हार्ट की बीमारी है, आप उससे बचना चाहते हैं, या आप बाईपास करा चुके हैं, एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं, आप चाहते हैं दोबारा आपको ब्लॉक नहीं हुए, दोबारा जीवन में कभी दोबारा एंजियोप्लास्टी बाईपास ना कराना पड़े, तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है अभी, उसका नाम है प्रिवेंटिव प्रोग्राम। तो वो हमारे यहां 2 से 5 सितंबर को होगा, 2 से 5 सितंबर को होगा, हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए, जो हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी, जिनको हिंदी समझ आती है उनके लिए 2 से 5 सितंबर को होगा, और जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, स्पेशली साउथ के लोग हैं या विदेश के लोग हैं, उनके लिए 8 से 11 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर जो भी अपने अपना चाहें इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो अपने टीचरों को कॉन्टेक्ट करके इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। 2 से 5 सितंबर हिंदी लोग, हिंदी वालों के लिए, और 8 से 11 अक्टूबर ये शांतिवन में होगा। 2 से 5 सितंबर हिंदी स्पीकिंग के लिए और 8 से 11 अक्टूबर इंग्लिश वालों के लिए। अभी एक और बाकी जो प्रोग्राम जो होते हैं हार्ट की आर्टरीज खोलने वाले, ब्लॉकेज खोलने वाले, उसके लिए आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं और उसमें हम आपको फिर लेटर डाल के खुद बुलाएंगे, और ये अपने टीचर के थ्रू आप आ सकते हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट सभी परमात्मा को याद करके जाएंगे।
सर एक क्वेश्चन है।
हाँ जी,
ये बच्चों में जैसे बता रहे थे कि बच्चों को 5 साल की उम्र में होता है,
5 साल की उम्र में नहीं होता, 15 साल की उम्र में हो सकेगा बाद में जाकर के। अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।